ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। निरंजनी अखाड़ा सन्यासियों का जिन्होंने चतुर्मासा किया चित्रकूट में, धूमधाम से 500 करीब महात्माओं की जमात सिरसावन में रहे, चतुर्मासा पूर्ण हुआ, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। महाराज बोले, यार वैष्णो संतों का एरिया है, फिर भी स्वागत करना चाहिए, संतों के लिए संत भाव से करना चाहिए था। किसी ने भोजन नहीं कराया एक दिन भी, मैं करूंगा, बुलाओ एक दिन भोजन करा देते हैं। तो लोगों ने कहा, बालम बड़े खुरापाती होते हैं नागा, वो दान दक्षिणा में आपका हाथियों मांग सके तो। बोले, हाथी दे देंगे और क्या है। तो एक ननकू सिंह ठाकुर थे, वो अपना हाथी वहीं बांध गए थे, तो जंगल में घुमा करे, बुलाया ठाकुर के, करे दान में से दान दे, तीनों लोग जीत ले, तू हमें दिया हम को के दे दे, कहा हो रे। बोले, जैसी आज्ञा महाराज। तो आवत है वो लोग, उन्हों के सबके कंबल देखा पड़ी, तो गया इलाहाबाद से ठाकुर साहब, जितने महात्मा थे उनके लिए चद्दर बिछाने को कंबल, क्या क्या उठा लाए, हुआ धूमधाम से भंडारा। महाराज के करे पूछी है, कौन अखाड़ा कौन द्वारा, हम लोगों के तो मालूम है नहीं। हम बोले, याद कर ली, कहा महाराज तुम देने भाई पूछ के याद कर ली, 25 नुक्ते थे, 1 2 3 4 25, लेकिन गुरु महाराज से कौन पूछता, कोई पूछा ही नहीं। आए फिर भोजन किया, हाथी दान दे दिया, कंबले दे दिया, चदरे दे दिया, ठाकुर साहब ने विदाई कर दिया। भोला हाथी था और उनका स्वागत हो गया, बहुत खुश हुए। वो ऐसा खड़ा था जिनके पास हाथी था ही नहीं, वो निहाल हो गए। और महाराज के हमार जीव छूट गया, बाबा हाथी क्या करेंगे। आश्रम में वही ननकू सिंह ठाकुर से यादव, तो अब शब्द चला, तब अहिरे शब्द रहा, तो मंगल लहिर ठाकुरों से कह के 2-3 गाय मंगवा लिया। बोले, महाराज के मैं दूध पिया ही हूं, जंगल में रखे और दूध पिलाया करे, गांवों की गाय चरे आवे तो मंगल दादा भगा दिया करे। तो गांव के पटेलों ने धारकुनी महाराज को शिकायत किया, बोले हमारी गायें चरने नहीं देता मंगल भाई। तो स्वामी जी चले आए, तो बोले, महाराज ये शिकायत करते हैं, दासी बाछी गाछी, आप ही तो कहा करते हैं दासी बाछी गाछी, तीनों साधु के फांसी, तो आप गाय क्यों रखे हैं महाराज। बोले, बेटा हम नहीं रखे हैं, वो मंगल दादा रखे हैं। ओके अहिरे के मार के भगा दो, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास कुछ भी नहीं, सचमुच नहीं था कुछ। वो मंगल दादा रखे रहे 2 किलोमीटर दूर जंगल में के गुरु महाराज के मैं दूध पिया ही हूँ। बोले नहीं महाराज, आपके नहीं रखे कचाई, आपके कथनी में कुछ और है, करने में कुछ और है। बोले का कहा ते हूं कहते जा तो हो के रखे कपड़ी। तो महाराज की यहां तो नामे मातर रहा, वहां 1000 खंड गाय है, उतनी भैंस है और पता नहीं कितना 2000 बीघा खेत है। बोले तेहू कहते जा तो होगी करे के पड़ी। बार भागेन स्वामी जी फिर वहां से बोल वह नहीं किए, बोलती है बंद हो गए चले गए। तो फिर बाद में हम गए धारकुंडी, हम बोले कहा स्वामी जी, बोले यार महाराज आशीर्वाद दिए वह है और का है। बोले चलो ठीक। महाराज का दरबार लगने लगा, श्रद्धा की लहर चारों तरफ दौड़ गई तो ब्राह्मण पहुंचा करे। एक दिन 4-6-10 गांव के पंडित पहुंच गए, बोले महाराज आप ब्राह्मण भोजन काहे नहीं कराते हो। बोले भाई मैं तैयार हूं, तुम लोगों से खाते बने तो करो ब्राह्मण भोजन, हमें कुछ कमी नहीं है, जोन मनावे बनाओ, जोन मनावे वो खाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, झगड़ा भर मत करना। बस इतनी जिम्मेवारी रखना। बोले महाराज झगड़ा नहीं हुई, बढ़िया मंडप बनाया, भागवत बैठा दिया और ब्रह्म भोज में जो उन्हें आता रहा वो सब बनने लगा। महाराज के जीवन काल में डालडा कभी नहीं आया था, विधिवत भोजन बनने लगा। रात दिन बोली जय दिन मनावे बनाओ खाओ चलो। अब चिलम चल रही महाराज की, नीचे वहां बन रहा उनका विधिवत। इतने में जब सुना गांव वालों ने कि महाराज के वहां ब्रह्म भोज चल रहा है, तो कीर्तन मंडली चली आई एक गांव से, उसमें एक हारमोनियम बजाने वाला था चमार, फर्स्ट क्लास गायक भी रहा बजाने वाला भी। वो भागवत का जो मंडप बना था उसकी परिक्रमा कर ले गए 2-4 कीर्तन करते हुए। भागवत पढ़ने वाले पंडित ने भागवत बंद कर दिया, बोले अनर्थ हो गया, ये भागवत की कथा बर्बस्ट हो गई। अब सीधे महाराज के पास पहुंचे, बोले महाराज यज्ञ विध्वंस हो गया। बोले कैसे? बोले चमार भागवत की कथा केवल परिक्रमा कर दिया। तो बोले हमने कहा था नहीं अपना पहरा देओ, अपने ठीक से करो, क्यों चमार को जाने दिया तुम लोगों ने? तब उन मंडली वालों से पूछा तो चमार और मंडली वाले बोले महाराज हम जानते थे हमारे छुए मान सब नष्ट हो गई है, इसलिए मैं दूर दूर घूम रहा था, हमने मंडप को नहीं छुआ, हमें इस बात का ज्ञान था। ये मंडप का डंडा गड़ा है, उससे 5 फीट की दूरी पर मैं हारमोनियम बजा के घूम रहा था, हम लोगों ने छुआ ही नहीं। तो बोले आहा भरभंड होएगा। बोले सर्वनाश होएगा। अब भागवत बंद, लाख मारा समझाए, बोले अरे भगवान तो सबरी के बेर खाते हैं, क्या करते हैं, तुरे बरबंड हो गया एक परिक्रमा करने से। इतने में एक गर्ग जी थे, वो मिलिट्री में रह चुके थे, तो मिलिट्री से बंदूक भी ले आए थे, तो जंगल में घुमा करे रात दिन, शिकार किया करे, वही मिर्गा मार के खाया करे, और वो आए शराबो पिए। वो आया तो बंदूक टांग के बोले अरे महाराज हम ब्राह्मणन के बुलाए के आपने नष्ट कर दिया, धर्म हेत अवतरे गुस्साई मारे मोहि व्याध की नाई। चौपाई बांदा जिला में बच्चे बच्चे को याद है क्योंकि तुलसीदास वहीं जन्मे थे ना। तो बोले करे तेहू कहते का देरे पौआ भरे के, तो दवाई वाई टूट फूट जाए हाथ पाओ तो शराब एक कुम्हार रहे तो बनावा करे पो महुए का, वो एक आध बोतल रख दे कहीं लाके, दो लाके दे रहे हो मुझसे, पी लिया तो बोले कौन कहता यज्ञ विध्वंस हो गया। ये कथा जो कह रहा पंडित, ये वहां चित्रकूट में होटल में बैठ के पकौड़ी खाते, जहां चमारो खाते डुमारो खाते, कौन कहता धर्म भ्रष्ट हो गया, और ये तो भगवान का नाम लेते हुए घूम रहा था। तो बोले अरे गर्ग जी रहे दो, ब्राह्मणन की प्रतिष्ठा ने धोई दो, गुरु महाराज ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। फिर भागवत शुरू, और बड़े सवेरे फिर हंगामा मच गया गांव से, जो पंडित गोल के गोल आए 10 गांव से, एक बिगड़ गया, बोले महाराज मैं भोजन न करी हूं, ब्राह्मण का भोजन न करना बहुत बड़ी धमकी है ये, बोले मैं भोजन न करी हूं। बोले करी क्यों न करी है, कहा होगा, बोले हमारा जो पटीदार है फलाना पंडित, वो कढ़ाई में बैठ के पूड़ी निकाल रहा है, 6 महीने पहले उसका और हमारा खान पान टूट गया था, ओके बनाई पूड़ी हम नहीं खा सकते। तो बोले देख ये राग द्वेष अपना घर में रखो, गांव में हुआ ही करता है, ये जगन्नाथ जी का भात है, ये तीरथ है, ये संतों का दरबार है, यहाँ राग द्वेष छोड़ के आया करो, राग द्वेष नदी के उस पार ही छोड़ दिया करो। बोले आहा जियत माखी न निगली होई महाराज। तो महाराज समझाए 2-3 बार, फिर उन्होंने माने। तब तो महाराज बोले करे जब जानत रहा कि तोर से राग द्वेष है, तो तोरी तरफ से खड़े होके हम लाठी चलाई, करे जानत रहा कि महाराज के लिए सब बराबर है, जैसा तू तैसे वो, बोले ई तो जानत रहा हूं, तब तू आया का करे, वहीं से कहेगा चाहत रहा परमहंस बाबा की ऐसी की तैसी, करे तुरी बमना की काहे आए रे। फिर उलट गए भाग यहां से, हम कोल बिलों को खिला देंगे, हम तो पहले ही जानत रहे तुम झगड़ा करी हो, तुम लोगों से खाते ही नहीं बने तो हम क्या करी, हम बुला लेंगे इधर जंगल से भगत तमाम है, कोल बिल खा लेंगे, चल हट रहा। बोले अरे महाराज तो नाराज हो गए, जाग के दूसरी एमसीएम बैठे, फिर पंचायत किया, बोले यार महाराज तो नाराज हो गए, हम तो सोचे हम लोगों की गुड़ेगिरी है मनाई है। फिर आए बोले महाराज बूंदिया प्रसाद मिल जाए, बोले तोरे लिए हमारे पास कुछ हो नहीं है। तब फिर सब बैठ के भोजन किए, राग द्वेष सदा के लिए खत्म हो गया, कई बार ब्रह्म भोज हुआ, एक बार किसी प्रकार की झंझट नहीं हुई। होली के समय पर महात्मा लोग भ्रमण करते हुए आए पंचकोशी परिक्रमा, तो एक दिन अंसुईया में जरूर भंडारा हो, 350 से 700-800 तक महात्मा आया करें, तो महाराज के यहाँ भंडारा हो तो पब्लिक भी चली आवे, और तो सब प्रसाद पावे हैं, लेकिन कोल भीलों की औरतें न पावे, हमें पता देर में चला, एक बार हमारी निगाह पड़ गई, तो हमने कहा पाड़े ये माई लोग बैठी है पेड़ के नीचे इनको खिलाओ, बोले ये नहीं खाएंगे महाराज, बोले क्यों, बोले ये ब्राह्मण का छुआ नहीं खाती। अब हमें नई बात मिल गई, हम बोले अरे पहली बार सुन रहे हैं पाड़े, हम बोले हमको इनके पास ले चल, माई लोगों से बात करना हमको तो आता नहीं था, तो हमें ले गए, हम बोले माई आप लोग खाती क्यों नहीं है, बोले अरे स्वामी जी ये ब्राह्मण पाड़े मिश्रा हरे छुए हुई हैं, इनका छुआ हम लोग नहीं खाती, क्यों, बोले ये अशुद्ध थे तो हम सबरी के खानदान की हैं, तो सबरी माई के चरण धो धो के पिए हैं तब ये शुद्ध हुए हैं। तो हम उस सबरी के खानदान की हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये हम लोगों से नीचे हैं, इसलिए हम इनका छुआ नहीं खाती। हम बोले बात तो सही है। पाड़े से हमने कहा यार किसी तरीके से खिलाई भूखी है, हमने कान में कहा योजना बता दिया। हम बोले देख इधर भंडार पंडितों का छेड़ है, ब्राह्मणन का इधर है ना, बोले हाँ महाराज। उधर गैरेज में देख तो अहिरन की कढ़ाई चढ़ी, देख कोई ब्राह्मण तो नहीं छुआ, तो बोले नहीं महाराज उधर अहिरे अहिरे हैं। हम बोले जल्दी कर, कोई ब्राह्मण ने छुए पावे अहिरन से परस हुआ तो। अहिर ले लेके जाबा भर भर के भोजन लाए, लगे परोसने और एक एक कोलिन 15-16-17 पूड़ी खाए और बढ़िया विधिवत परोसे, चीनी ऊपर से परोसी जाती, वहां का नियम है आधा किलो चीनी तो सभी खा लेंगे, उसमें पानी का छींटा दे के और फिर पूड़ी मीस के खूब खवाए और हम कहते जाए पता नहीं पूजात ब्राह्मण कहां से आए गए। पंडित लोग ऊपर खड़े खड़े मुस्कुराए, आयरन से कहा देखो रे कोई छुए नहीं पा। पंडित बोले बेफिक्र रहो महाराज ने आए पही। और फिर बाद में जब भोजन हो ही गया तब उन्हें शक हुआ कहीं पंडितन वाली बनाई पूड़ी तो नहीं खिला दी। तब हम बोले माई माता सबरी की चरण धो के पिया शुद्ध हो गया, माँ भगवान ने जिसके झूठे बेर खाए और चरण धो के जब ब्राह्मण शुद्ध हो गया और फिर बाद में अशुद्ध कब हुए, वो शुद्धे शुद्ध चले आ रहे हैं, दोबारे कभी अशुद्ध हुए सुनने में आया, बोले कभी नहीं। तो शुद्धे चले आवत हैं, कब अशुद्ध हो गए, ब्राह्मण तो तब से शुद्धे चले आवत हैं, अब उनका छूने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ फिर कोई घटना घटी हो अशुद्ध हो गए हो तब ये गलत हो सकते हैं। तब से माता सबरी की चरणामृत, और फिर कब वो कमजोर पड़ गया चरणामृत जो ये अशुद्ध हो गए, उसका प्रभाव युगों रहेगा, उसका चरणामृत का भगवान की कृपा से इतना प्रभाव है युगों कल्प कल्पांतर तक शुद्ध रहेगा माई। वो फिर भगवान के धाम चली गई, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गई, उसके लिए तो हम अवतरस रहे माई, तुम लोग भजन करो ना। बोले महाराज ठीक है, तो ये तो हम लोगों के को बताइबे नहीं किया, ये ज्ञान को नहीं बतावा महाराज। हम बोले तुम लोग ने को बताई तबो शुद्धे रही हो। जब बहुत खुश हुई तब कई भंडारा हुआ, फिर सब बराबर बैठ के खाया करे। तो भ्रांति भारतवर्ष में महापुरुषों की स्वर्ण सानिध्य के अभाव में पनपती है, अन्यथा सदा के लिए दूर हो जाती है। जो भली प्रकार 6-7 चेला हो गए, विधिवत चलने लगा आश्रम, चारों तरफ संतों में नाम हो गया, परमहंसजी नाम के कोई वहां संत रहते हैं, चित्रकूट में भी कोई सत्संगी पहुंच जाए कोई सिद्ध पहुंच जाए तो बोले इन्हें परमहंसजी के पास भेज दो वहीं पोल खुलेगी। तब हल्ला हो गया चित्रकूट में कि परमहंसजी का खर्चा कैसे चलता है, न तो भिक्षा करवाते हैं, न किसी सेठ साहूकार से बंधा है, न कहीं फार्म है, इनकी वृत्ति कैसे चलती है। और बड़ी सुव्यवस्थित वृत्ति चल रही है। तो बोले कि रसायन विद्या जानते हैं, सोना बनाते हैं, इलाहाबाद में कहीं बिक जाता है या करवी में फलाने सेठ के यहाँ बिकता है, उसी से खर्चा चलता है, क्या ठाट से खर्चा चल रहा है। सब महात्मा पूरा चित्रकूट तो भिक्षा मांग रहा है और ये ने मांगते न मांगने देते हैं। बड़े बड़े महंत थे, उनका तो खर्चा पूरा साल भर चलता नहीं, इनका कैसे चलता है? वो तो साल भर चले में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं, बताते हैं, और ये वैसे ही कोई दो पैसा चढ़ाता दो ऊपर से ताड़ना दे दिया करते हैं, फिर कैसे चलता है? फिर हवा बदली, बोले नहीं नहीं, ऊपर मशीन फिट है, नोट छापते हैं पहाड़ पर। फिर हवा बदली, नहीं नहीं, चोर चंडाल डाकू किसके भगत होते हैं? और परमहंस जी का नाम लो तो लूटना तो दूर की बात, और दो फरलांग साथ जाके रास्ता बता देते हैं, भैया यही रास्ता है परमहंस जी के आश्रम का, निर्विघ्न चले जाओ, कोई खतरा नहीं, वो लूटने वाले रास्ता बता दें। इतनी भावुकता सिद्ध है कि डाका डलवाते हैं, ये डाकुओं के सरदार हैं। और एक कोई संत ने चिट्ठी लिख दिया दिल्ली, परमहंस जी डाकुओं के सरदार हैं, डाका डलवाते हैं। दिल्ली से चिट्ठी आई भोपाल, भोपाल से सीआईडी इंस्पेक्टर चला जांच करने, तो सीढ़िया चढ़ रहा था, हम भी खड़े थे महाराज के पास, तो सीआईडी इंस्पेक्टर इधर उधर देखे और चढ़ चला हुए। तो महाराज बोले का भौचक्का की तरह इधर उधर देखो, तो जो कुछ है मोरे भीतर है, इतने ही में है बेटा, और कहीं कुछ नहीं है, सब जगह पत्थर है पानी है, यहां वार का देखा था। तो सोचे मैं जांच करने आया हूं और महाराज कहते यहां वार का जांच करो, तो जो कुछ भीतर है इतने ही में है जे आसन में, और कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात थी, महापुरुष का जो कुछ धन होता है हृदय में होता है, जहां बैठे उतने ही में है। फिर भी कड़ाई से बैठा रहा दो एक घंटा, उधर 12:30-1 बजे बोले महाराज आपका शत्रु कौन है? बोले हमारा शत्रु एक ही था, यमराज, माया। भगवान ने माया से निवृत्ति दिला दिया, गर्भवास से छुटकारा दिलवा दिया। यमराज था, यमराज से हमको विजय दिला दिया, अब दुनिया में हमारा शत्रु कोई नहीं है। तो महाराज फिर ये चिट्ठी दिल्ली गई, भोपाल आई, मैं जांच करने आया हूं महाराज, उसमें वही लिखा था परमर जी डाकू है, डाकुओं के सरदार हैं। तो बोले इसके लिए कोई क्या करेगा, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी, ये उनकी भावना का दोष है, नहीं कि हमारा शत्रु है। जनकपुर धनुष यज्ञ में जब राम पहुंचे तो सब जितने दुर्जय योद्धा देश विदेश के सबका भीड़ लगी थी। जहां राम पर दृष्टि पड़ी तो असुरों राक्षसों ने देखा साक्षात काल खड़ा है, आज मृत्यु निश्चित है, तुरंत आड़ में हो गए। दुर्जय योद्धा थे जिनने लड़े का अभिमान था, गर्व था, उन्होंने कहा इज्जत बचाओ, वीर रस छाया है। और जो भगत थे उन्होंने देखा कि भगवान खड़े, लगे स्तुति करने। जनकपुर वासियों की निगाह पड़ी तो बोले जनक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सठियाए गए राजा सब, कन्या के जीवन से खिलवाड़ किए पड़े हैं। अरे जब लड़का पसंद आ ही गया तो धनुष तोड़ो धनुष उठाओ, ये बकवास की कौन जरूरत? अरे रात में कोनो बड़ी बुला के आरी लगवा के तोड़वा दे चाहत रहा, अरे फिर मोम से चिपका दे, जो लड़का पसंद उसको आगे बढ़ा दे, उठाएगा टूट जाएगा। अरे कोई तरीके तो तमाम है, जो बड़े बड़े दुर्जय योद्धा नहीं तोड़ पा रहे तो ये क्या खाक तोड़ेगा? नई खिली हुई पुष्प कली के समान शरीर कोमल, आंसू बहाने लगे सारे जनकपुर वाले, उनको कोमल कली के समान दिखाई पड़ा और योगी ने परम तत्व में भाखा शांत शुद्ध मन परम प्रकाशा। और योगियों ने परम तत्व में देखा शांत शुद्ध मन के अंतराल में परम को प्रकाशित देखा, बाहर कुछ देखा ही नहीं। बाहर तो गो गोचर जान लग मन जाई सो सब माया जाने हूं भाई। तो ये तो उसकी भावना का दोष है न कि हमारा शत्रु है। बोले महाराज आप महापुरुष से आपके लिए सब समान है, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। हमारा सौभाग्य रहा कि चिट्ठी चली गई, हमें दर्शन हो गया। ये हमारा सौभाग्य था जो चिट्ठी गई। गया और तीसरे दिन पकड़ लिया जिसने चिट्ठी लिखी थी। बोले जाओ परमर्षि के चरणों में गिरो, उनका जूठा प्रसाद खा के आओ, भविष्य में खुरापात कभी मत करना, नहीं तो जन्म भर जेल में सड़ा के मार डालूंगा। आया फिर इतनी बड़ी जटा रख के आया, एक संत बेश में थे। आते ही महाराज ने कहा करे जयंता पटक सिलाई से चौंच मारता तो अच्छा रहा, यहां आने की हिम्मत कैसे पड़ी। लेकिन चढ़ गए ऊपर, बैठने को कुर्सी दिया महाराज ने। बोले महाराज कुछ खाने को दीजिए। बोले तोरे लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोले अरे महाराज हम आएंगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। एक लड्डू दिया, प्रसाद पाया। कहाँ आए हो? बोले चेला इधर ही भटक गया तो ऊके ढूंढे आया हूँ। बोले अच्छा अच्छा ढूंढो फिर चेला। निकल गए, फिर कोई उत्पात नहीं। महाराज के वो महापुरुष का खर्चा भगवान स्वयं चलाते हैं। भगवान हृदय में आ जाते हैं तो लक्ष्मी भी चारों तरफ काम करने लगती है। जागर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शंभु करे कोतवाली, जागर ब्रह्मांड भये टहलवा, विष्णु करे रखवाली, तो उन घर चेती है रे भाई तोरा आवागमन मिट जाये। प्राय शेरों का तो रास्ता ही थे, रात भर में दो चार दस शेर इधर से उतर निकल जावा करे सामने से। और जो आश्रम की जो तीसरी कोठरी में शेर रहता था स्थाई, जिस दिन से कोठरी में झाड़ू लगवा दिया उस दिन से फिर कोठरी में तो नहीं गया, लेकिन जन्मा वहीं था, उसका घर वहीं था, रहे वहीं पर, कभी छत के ऊपर कभी इधर, जैसी घर है उतनी दूरी पर, कभी इधर कभी गंगा किनारे कभी पहाड़ पर। तो लोगों को दिखाई पड़ जाए तो बोले अरे महाराज शेर शेर। बोले हमार पहरेदार है, चिंता मत करो चले आओ, नुकसान न करी। बांदा के एसपी साहब वो अपने सिपाहियों के साथ बंदूकें लेके, लड़के बच्चे लेके, दो लड़के थे चार औरत, खुद नीम साहब पहुंचे। बोले महाराज सुना है आपके पास शेर आता है, आप जब चाहते हैं शेर को बुला भी लेते हैं और हम वही देखने आए हैं, आप शेर को बुला दीजिए, हमारा निशाना बहुत अच्छा है, हम शेर का शिकार करेंगे, आप बुला दीजिए मैं मार लूंगा। चित्रकूट का दरोगा इधर उधर दो तीन थाने के वो भी, लेकिन चित्रकूट वाले जो महाराज के पास आया जाया करते थे वो भगत भी थे। महाराज ने उनसे कहा देख अपने साहब से कह दो संतों का आश्रम है, यहाँ हिंसा का नाम न ले, यहाँ शिकार नहीं होता, अपने साहब के मना कर दो। तो मना करें बड़ा साहब जो ठहरा सुने ही ना, फिर वही घुमा फिरा के शिकार, आप बुला दीजिए महाराज मेरा निशाना बहुत अच्छा है। तब महाराज बोले देखो बाल बच्चे लेके ऊपर जाओ, यहां जगह नहीं, हो गया दर्शन, ऊपर जाओ ऊपर सबको स्थान दे दो। दरोगा जी पूरी टीम लेके ऊपर चले जाओ, वहीं रहो, अब भजन विघन पड़ रहा है, हो गया दर्शन तो हो गया ना, चले गए। ऊपर एक भी किवाड़ी नहीं थी, ऊपर भी पांच सात कोठड़ी, किवाड़ी की सीमा नहीं, नित छद्म मैदान और ऊपर पहाड़ और पहाड़ का जंगल झुका हुआ, इधर भी पहाड़ जंगल, इधर भी जंगल और बीच में कोठरियां खुला ओपन। जो आसन लग गया इतने में शेर चला आया सामने गंगा किनारे, और 10:30 बजे करीब आके गर्जा बोले ओम ओम ओम। अब लड़का रोए आई 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 और मेरिया कहाँ पे, तो महाराज उठ के और शेर वहां है आसन छोड़ के कुएं पे खड़े हो गए शेर और ऊपर साहब के बीच में, बोले लो तुहार बाप आ गया अब छाती में बार हो तो मार लियो। अब उस साहब के वो धोती ढीली हो गई बोले महाराज को छेड़ दिया, दुर्गा जी मना की हो माने हो नहीं मार लो छाती में बार हो। और 11 नाल बंदूक लेके कुएं पर सिपाही नीचे लेटे रहे, अब साहब के पास में तो परिवार कैसे लेटे, उस कुएं पर से बंदूक के वहीं छोड़ के सर देनो भागे हैं सबके सब। महाराज के बाजू वाली 3 कोठरियां थी उसमें घुसुड़ गए, किवाड़ी हो में नहीं रहे और फिर बोले महाराज क्षमा करें गलती हो गई। इतने में और धाड़ा कस के तो माई लोग बोले बच्चे मर जाएंगे, एक छलांग में ऊपर आएगा, इसको आने में कितनी देर लगेगी, पहाड़ चढ़ते उतरते खा जाएगा सब, बच्चे मर जाएंगे, मैं मारी जाऊंगी। माई रोवे बच्चे चिल्लाए, साहबो माफी मांगे ऊपर से, बोले महाराज क्षमा करें इसे विदा कर दो जल्दी। बोले बंदूक में टोटा नहीं है कारे टोटा मने कारतूस इतने में फिर गर जाती सी बार घूम के झूम के खड़ा होके फिर महाराज बोले अच्छा नरसिंह भगवान अब जाओ, हो ही गया। फिर आस्ते आस्ते निकल गया, रात भर तो नींद का करे आवे, बोली घूम फिर के इधर से न चला आवे, घूम फिर के इधर से न चला आवे, चारों तब तो खुला है ना। फिर सुबह के समय नींद आ गई तो सो गए। महाराज बोले जब सुबह हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गए तब बोले सिपाहियों से बाहर निकलो रे, तुरे बंदूकिया कोई लेके चलाने जाए, कुएं पे पड़ी थी ऐसे ही फ्री। तब हंसते हंसते सब आए और अपना अपन बंदूक लेके टोपी सिर में धर के फिट हो गए सब। साहब भी आए बोले महाराज हम यही देखने आए थे, महाराज को विषय में जो बताया जाता है सही है कि झूठ है, आप हमारी आशाओं से बहुत आगे हैं, हम क्या तोलेंगे आपको, आपकी क्या हम जांच करेंगे, आप महापुरुष हैं भगवान हैं, जब तक रहूंगा मैं जीवन में जिंदा तब तक सेवा करता रहूंगा। देखो दरोगा जी यहाँ खूब सामान भेज दो, सदैव भेजते रहना, और चले गए। दूसरे दिन घोड़ा भर के सामान आया, महाराज को आदेश मिला ही खून है लेना मत, ये जितना गल्ला इसमें खून बह रहा है। दरोगा जी से कहा, महाराज ने बोले देखो हम नहीं लेंगे, एक दाना ले जाओ। अपन बोले अरे एसपी साहब हम लोगों पर नाराज हो जाएंगे, बोले पैसा दिए रहे एसपी साहब, बोले उनका हुक्म ही पैसा है, बोले तू हुक्म बजा अपनी नौकरी कर, हम नहीं लेंगे। एक नहीं लिया तो वैसे भी बिगड़ा दरोगा के ऊपर, तुम्हारा पैसा खराब है, मैं देता हूं अपने तनख्वाह वाले पैसे से। खुद आए तनख्वाह के पैसा से सेब अंगूर फल फूल लेके आए, तो महाराज बोले एसपी साहब अभी समय नहीं आया आपकी सेवा लेने का, कुछ दिन रुक जाओ 6 महीना। उसके बाद आप कुछ भी लाओगे हम ले लेंगे, अभी सेवा लेने का समय नहीं आया ना, आपकी सेवा करने का समय आया, अभी हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो नीचे बैठे बैठे कहे महाराज हम अच्छी जाति के नहीं, इसीलिए आप नहीं ले रहे हैं। तो बोले हम महात्मा हैं, हमारे यहां जाति पाति नहीं लगती, हरिजन चारों वर्णियों से ऊंचा, हमारे ये भेदभाव नहीं रहता, किसी प्रकार का नहीं रहता, लेकिन अभी भगवान का मन यही है कि तुम्हारी सेवा का समय नहीं आया है। तो वहीं नदी किनारे उड़ेल दिया सारे फल और वैसे ही लौट गए। शाम को महाराज जब नदी किनारे आए तो मार से अंगूर पड़े थे, बंदरों खा रहे थे, फिर भी खत्म न हो, फिर तो फेंका पड़ा था कि दो एक सेव हमो खाए हो तो आकाश वृत्ती है पड़ा है ना। इस तरीके से समय समय पर घटनाएं घटती रहती थी जंगल में। महाराज कहो भगवान ही सब पूरा कर देते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। सिद्धि और कुछ नहीं है, जो मन में इच्छा कर लो भगवान वो पूरी कर दिया करते। जब आस्ते आस्ते शिष्य आने लगे तो महाराज कहें वो हम विरक्त शिष्य बनाते तो 1000 से कम नहीं होते, लेकिन भगवान मना कर दें इसमें लक्षण नहीं। तो घर में चिट्ठी लिखवा के किसी से सूचना दिलवा के, मोबाइल तो थे नहीं उस समय, सूचना दिलवा के पकड़वा के भिजवा दे, किसी को समझा बुझा के, किसी को गाली वाली दे के, डांट फटकार के जरूर भगा दे, न रखें। क्यों? भगवान मना कर दे इसलिए न रखें। ऐसे ही भटकता हुआ एक ब्राह्मण का लड़का 13 वर्षीय अबोध, 13 वर्ष कौन उम्र है, कुछ भी नहीं, गोरंगार वो बहुत तेज तर्रार आ गया और प्रणाम किया और लगा झाड़ू लगाने, बगैर पूछे झाड़ू लगाने लगा। और फिर लकड़ी पकड़ी रखने लगा, जो कुछ सेवा अपने बुद्धि से सोच समझ के करने लगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बढ़िया बढ़िया बातें पूछे, फिर उससे पता चला घर में एक फैक्ट्री भी है, सब कुछ ठीक, लेकिन खाना नहीं खाए, बगैर खाए 13 दिन बीत गया। तब महाराज कह रही अज्ञानी है रे, बहुत समझा महाराज तब वो नहीं समझे। नहीं महाराज, खाने की कौन जरूरत है, और हवा भर भी चेहरे में सिकन नहीं आवे, वो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में दौड़ दौड़ के सब काम करें, लकड़ी ले आवे, कमंडल मार लावे, थाली मार लावे, सब सेवा करें, सबको खिलाएं, लेकिन अपने एक दाना नहीं खिलाया, 13 दिन हो गया। तो महाराज कहें यार ये अज्ञानी है, इसको कुछ खिला दे। सच्चिदानंद तो उन ब्रह्मचारी जी ने सत्वा घोल के गिलास में पतला पतला, 13 उपवास के बाद में गाढ़ा नहीं देना चाहिए, और जबरदस्ती डांट के पिला दिया। तो जहां पी तो लिया, फिर कुएं पे गिलास धोवत जा रोवत जा, बोले बोले महाराज हमार धर्म नष्ट कर दिया हूं। बोले करे पूछो सारे से कौन धर्म नष्ट कर दिया रे। तो बोले हमें सत्वा खिला दिया, हमार धर्म नष्ट कर दिया। तो बोले करे हम लोग खाना खाते हैं क्या, हम साधु नहीं। बोले हाँ आप साधु नहीं है, साधु कहाँ खाते हैं, देखो ससुरा का कहते। उसी दिन या दूसरे दिन पांच महात्मा एकदम विभूति पोते छोटी छोटी झोलिया बगल में लटकाए, तुम्बड़ी लिए, हाथ में कमंडल लिए, एकदम एक तरीके के चले आए, आते हुए दिखाई पड़े। महाराज बोले, देख तू जब 22 साल 23 साल का हो जाएगा तब तुम चले आना, हम तुमको रख लेंगे, अभी घर जा, माता पिता की सेवा कर, पढ़ लिख, हम तुम्हें अवश्य रख लेंगे, अभी भगवान का मन नहीं है, तुमसे पार नहीं लगेगा। समझो माने ही ना। तो महाराज सोचे, भगवान कहते हैं इसको मत रोको, इससे पार नहीं लगी, इससे हम जीव कैसे छुड़ावे। महाराज जीव छुड़ाने में लगे ही थे, इतने में पांच महात्मा दिखाई पड़ गए। तो बोले, देख कितने सुंदर सुंदर महात्मा आ रहे हैं, देख इनके साथ चला जो। महाराज का कोई भेजने का मन नहीं था, वो उसका महाराज का मन रात घरे भेज दें, घर वालों का पता उधर का मिले ना। इतने में वो सुन लिए दूर से कोई है और वहां भेजना चाहते हैं, तुरंत चढ़ गए सीढ़िया, महाराज को दंडवत किया, चलो बच्चा राम रमेति मनोरामा, लगे राम राम के तमाम मंत्र पढ़ सुनाने, और राम जी से बढ़कर कौन है, राम गट गट में रमण करता है, मन में रमण करता है, चलो। अब भोला भाल जी के महाराज रखते ही नहीं है, महाराज को छोड़ के जाने का मन नहीं करे, महाराज रख ही नहीं रहे हैं। अब किसी तरीके से रोते गाते चला, वो ले गए, ये मंत्र देंगे, वो मंत्र देंगे, फुसलाते हुए वो चला गया। किसी तरीके से जा रहा था, महाराज की ओर देख रहा था, और यहां गए तो एक दिन तो पहुंचने में लगा, दूसरे दिन उनके कैंप में जौन खुरापात शुरू किए उन लोगों ने, उस लड़के के साथ दुष्व्यवहार शुरू कर दिया। तो लड़का चिल्लाया बड़ी जोर से, तो सोचा हम पकड़ जा, बाबा लोग डर गए। इतने में वो तीसरे दिन भाग के आश्रम चला आया, बाबा लोगों को डरा दिया, होशियार बहुत रहा, डरा दिया, बड़ी जोर से चिल्लाया, तो ढूंढा भी, पुलिस पकड़ ली, बाजू में कैंप है, हम लोगों को कैद कर ली। तो वो बाबा लोग पहरा लगाए रहे, वो दुष्चरित्र रहे, सबको खाली रंगे भर पोते रहे, तो इतना जोर से अल्लाह मचाया, उपद्रव किया कि वो सब डरेंगे, फिर भी पहरा लगाए रहे, पारा पारी, कोई घूमे कोई पहरा दे, और रावटिया कहीं से छेद करके भागा, मेले में गोझल होके भाग के तीसरे दिन चलाया। अब महाराज को देखते ही लगा भुखार छोड़ के रोने, और ऐसे बिगड़ा जैसे कोई लड़का अपने बाप के ऊपर बिगड़े है। आप जानते थे उन नीचे आप भागे, बिसरिये दुराचारी, हमको क्यों भेज दिया महाराज, क्या हो, हमारे आंखों में आंसू आ गया, मारो साला, भेष बना के दुष्ट पड़े हैं काल नेमी कपटी मुनि, अब कोई कहां जाए। सांत्वना दिया, बोले कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक है, अब हमने कहा था अभी संस्कार नहीं है तुम्हारा, अब तो समझ में आया कि संस्कार में नहीं है, जहां जाओगे खतरा ही मिलेगा, अब चले जाओ घर। किसी तरीके से खर्चा भी दिया कि नहीं और भेज दिया, चल तो दिया बेचारा। महाराज बोले वो गया नहीं है, इसी जंगल में है, ढूंढो उसको। फिर ढूंढवाया उसको, बोले उसकी श्वास बोल रही, वो जंगल में है, यहां जो भी आवे उससे ढूंढवावे। बोले महाराज इतना छोटा लड़का इस बियाबान जंगल में, यहां कदम कदम पर शेर चीते भालू घूम रहे हैं और नरभक्षी भी इसमें है, नहीं हो सकता। चार दिन बुरी तरह ढूंढवाया महाराज ने, महाराज क्या इसकी सांस बोल रही है, वो है यहां पर। ढूंढे, आवाज दिया, लेकिन वो बड़ा टिन्नी रहा, सुने ससुर आवाज बोले ना। फिर कुछ पहाड़ चढ़ के ढूंढे, इधर ढूंढे, चार दिन बाद महाराज बोले, चाहे मर गया हो चाहे कहीं चला गया हो, अब तो नहीं समझ में आवते। फिर बैठे बैठे महाराज बोले, रे अभी जिंदा है, यही है, श्वास बोलते, फिर ढूंढो यार, वो है जंगली में। वो पहाड़ चढ़ के ऊंचा, सीधा पहाड़, एकदम तीर की तरह, अनुसुईया का पहाड़, चित्रकूट, कोई गया तो देखा होगा, ऊपर चढ़ गया था। ऊपर चढ़ के बैठ के जानवर ने तो नहीं छुआ, खुदे से ही त्याग दिया मारे गलानी के। और फिर बाद में चदर ओढ़ के पड़ा रहा, गिद्धों ने चदर उधर छुआ, गिरा ऊपर से धड़ाम सीधा। सातवें दिन उसका शरीर गिरी तो पुजारी वगैरह उधर से चिल्लाए, बोले महाराज एक लाश गिरी पहाड़ से। बोले तुमने देखा है? बोले हाँ महाराज, हमने देखा, इधर से गिरी, वहां गिरी है, जाओ पुलिस को रिपोर्ट करो। तो कांतानाथ का थाना लगता था 15 किलोमीटर दूर से, फिर पुलिस आई, उस लाश को लाके रखा महाराज के सामने, तो वही लड़का था, प्राण त्याग दिया। महाराज कहे, भगवान हम सोचे कोनो रंगे घर चला जाए, ये पता होता कि प्राणी ये दे दे थे, एक थे पति थे, सही ससुरा के रख लेते। ऐसे बहुत टेक के पक्के लोग, किसी ने घर में डांट दिया तो भागा, स्कूल में तुझ एकांत ढूंढते ढूंढते तू चित्रकूट भगवान की तपोभूमि जो ठहरी, स्कूल में फेल हो गया तो भागा, कोई कारण पड़ गया तो भागा। इसलिए 12 से 14 वर्ष के बीच के लड़कों को नहीं डांटना चाहिए, कलेजा फट जाता है। और 16-18 साल में थोड़ा थोड़ा डांटो, और ब्याह होए के बाद उल्टा तो उसे लड़ जाई। भैया उसी में कह रहे ये बात, ये हमारी बात है, गुरु महाराज की नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।